लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण विश्व बच्चों को सैनिक बनाने के अभिशाप से बच सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। आज के प्रसारण में 78वें भजन के 23 से लेकर 32 तक के पदों की व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ, याकूब के विरुद्ध अग्नि धधकने लगी, इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें उनकी सहायता का भरोसा नहीं था। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 78वें भजन के 21वें और 22वें पदों के शब्द, जिनकी व्याख्या हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबिलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत की थी। इन पदों में भजनकार ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है। वह व्यथित है, दुखी है, क्योंकि ईश प्रजा का खिताब पाने वाले इजरायली लोग ईश्वर के कार्यों को भूल गए थे। भजनकार मानवीय दृष्टि से अपने मन की बात कहता है। उसका कहना था कि जिस तरह मनुष्य क्रुद्ध होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी क्रुद्ध होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी भी क्रोध नहीं करते। वस्तुतः भजनकार चाहता था कि लोग ईश्वर के महान कार्यों को देखें, उनका अनुभव प्राप्त करें और उनके लिए ईश्वर की स्तुति करें, उनका गुणगान करें तथा उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया करें। आगे के पदों में भजनकार यह भी दर्शाता है कि इतनी अधिक कृतज्ञता के बाद भी ईश्वर ने मिस्र की गुलामी से छूटी इज़राइली जाति के लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया। 23 से लेकर 29 तक के पदों में लिखा है, प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया, उसने आकाश के द्वार खोल दिए, उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी, हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई, प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया, उसने आकाश में पुरवई चलाई, उसने अपने सामर्थ्य द्वारा दक्षिणी हवा बहाई, उसने उनके लिए धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के बालू की तरह असंख्य पक्षियों को बरसाया, उसने उनको उनके शिविरों के बीचों बीच और उनके तंबुओं के चारों ओर गिराया, वे खाकर तृप्त हो गए, ईश्वर ने उन्हें उनकी रुचि का भोजन दिया था। श्रोताओं, यहाँ मन्ना स्वर्ग की रोटी, धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के बालू की तरह पक्षियों का बरसना आदि अभिव्यक्तियां दृष्टांतिक भाषा शैली है। पहले ही हमने आपको बता दिया था कि 78वें भजन का रचयिता दृष्टांतों में या उदाहरण दे देकर शिक्षा प्रदान कर रहा था। प्रभु ईश्वर ने उन्हें रोटी खिलाई, वे खाकर तृप्त हुए, किंतु इन प्रकाशनाओं के बावजूद वे अंधे बने रहे और प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाए, क्योंकि 22वें पद के अनुसार वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें उनकी सहायता का भरोसा नहीं था।
यीशु तुम ही भोजन हो,
श्रोताओ, प्राचीन व्यवस्थान के निर्गमन ग्रंथ में लिखे शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि प्रतिज्ञा देश की ओर बढ़ती इजरायली जाति को प्रभु ईश्वर ने आदेश दिया था कि वह केवल एक ईश्वर की आराधना करे और उनके सिवा किसी की पूजा न करे। किंतु इजरायलियों ने ठीक इसके विपरीत किया, उन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया। निर्गमन ग्रंथ के 23वें अध्याय के 24वें पद में हम प्रभु ईश्वर के शब्दों को इस तरह पढ़ते हैं, तुम न तो देवी देवताओं की वंदना करोगे और न उनके कार्यों का अनुसरण करोगे। जबकि इसराइलियों ने इसके विपरीत कार्य किया, उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा की, जिसके विषय में निर्गमन ग्रंथ के 32वें अध्याय के पहले पद में लिखा है। इधर जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत पर से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वे हारून का विरोध करने के लिए एकत्र हो गए और उनसे कहने लगे, अब हमारे लिए ऐसे देवता बनाओ जो हमारे पथ प्रदर्शक हों। और उन्होंने मिलकर सोने का बछड़ा बनाया और नाच गान के साथ उसकी पूजा की। स्तोत्र ग्रंथ के 78वें भजन के आगे के पदों में, यानी कि 30 से लेकर 32 तक के पदों में इसी स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए भजनकार कहता है, वे अपनी लालसा को शांत नहीं कर पाए थे, उनका भोजन अभी उनके मुंह में ही था कि ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। उसने उनके शूरवीरों को मारा, उसने इसराइल के युवकों को भूमि पर बिछा डाला। यह सब होने पर भी वे पाप करते रहे, उन्हें ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। श्रोताओ, इन पदों द्वारा भजनकार ने यह कहना चाहा है कि मुसीबतें आने पर हर मनुष्य ईश्वर की ओर अभिमुख होता है, उनसे दुआ करता है, किंतु प्रार्थना करना तो दूर, इसराइली लोग अपने संकटों के लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार मानते रहे और उनके नियमों की अवहेलना करते रहे। सिनई पर्वत से निकलने वाली धधकती अग्नि को उन्होंने ईश्वर के प्रेम की ज्वाला समझने के बजाय विनाशकारी आग समझा। उक्त पदों के ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा, उसने उनके शूर वीरों को मारा, उसने इसराइल के युवकों को भूमि पर बिछा डाला आदि शब्दों में भले ही भजनकार कहता है कि ईश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उन्होंने उनके शूरवीरों को मारा, तथापि इन शब्दों से पता चलता है कि प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा खतरों से खाली नहीं थी। लोगों को उजाड़ प्रदेशों से बिना जल और बगैर भोजन के आगे बढ़ते रहना पड़ा। उन्हें जंगली जानवरों और जहरीले सर्पों का सामना करना पड़ा और इसी के दौरान कई शूरवीरों की मौत हो गई थी। इसी संदर्भ में भजनकार कहता है कि ईश्वर ने उनके शूरवीरों को मारा, ईश्वर को ही वे अपने संकटों के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे, क्योंकि ऐसा करना उन्हें सरल लगा और इसीलिए उनका विश्वास डावाडोल हो गया। श्रोताओ, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने पथ से हट जाना या भटक जाना विश्वास की कमी का परिणाम है। विश्वास और भरोसे के अभाव में ही मनुष्य वह करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। क्षण भर के लिए उसे प्रतीत होता है कि जो कुछ वह कर रहा होता है वही उचित है, वही उत्तम है, क्योंकि सरल भी है। किंतु क्या वह कार्य सही है? भलाई करना यह सत मार्ग पर चलना सदैव कठिन रहा है। यह मार्ग सदा से ही टेढ़ा रहा है, इस पर मानो सदैव कांटे बिछे रहते हैं, किंतु यही मार्ग सही है। यही है वह मार्ग जो सत्य यानी ईश्वर से प्रस्फुटित होता है।
और मैं जीवन पूर्ण हूँ,
रास्ता हूँ सत्य हूँ और मैं जीवन पूर्ण हूँ।
सारी है इसी एक सत्य के आधार पर। मुझको जानो मुझको मानो मैं ही तो संपूर्ण हूँ।
मुझको जानो मुझको मानो मैं ही तो संपूर्ण
रास्ता हूँ सत्य हूँ और